नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के एक बहुत ही अहम उद्बोधन पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। इसका नाम है बोया काटा का अकाट्य सिद्धांत। ये उनके गुरु से मिले एक कह सकते हैं एक शक्तिशाली सूत्र पर आधारित है
जी।
तो आज का हमारा मकसद है कि ये बोने और काटने का जो सिद्धांत है इसे जरा समझें। पूज्य गुरुदेव के हिसाब से ये जो रिद्धि सिद्धि है, मतलब सच्ची सफलता या खास क्षमताएं और संपन्नता, वो फोकट में तो मिलती नहीं।
बिल्कुल नहीं।
तो फिर इसका राज क्या है?
देखिए, ये सिद्धांत अपने आप में है तो बड़ा सीधा पर गहरा बहुत है। इसका सार बस इतना है कि हमारे पास जो कुछ भी है, भाई हमारा शरीर है, हमारी बुद्धि, भावनाएं हैं या धन है, उसे अगर हम परमार्थ के लिए लगाएं, पूज्य गुरुदेव उसे समाज रूपी भगवान का खेत कहते थे, तो जब हम उसमें लगाते हैं ना तो वो कई गुना होकर हमें वापस मिलता है। ये एक तरह का आप कह सकते हैं प्राकृतिक नियम है, आध्यात्मिक नियम है।
पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि ये ज्ञान उन्हें तब मिला जब वो 24 साल का लंबा गायत्री पुरुषचरण कर रहे थे। उनके गुरु ने तब साफ कहा था कि भाई सिर्फ जप करना काफी नहीं है, रिद्धि सिद्धि चाहिए तो बोना पड़ेगा।
हाँ, बोना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
तो ये बोना क्या था? गुरु ने चार चीजें बोने को कहा। सबसे पहली थी शरीर।
हाँ, शरीर यानी अपना जो समय है, अपना श्रम है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं रखना, उसको समाज की भलाई के लिए लगाना, जिसे वो विराट भगवान कहते थे, उसकी सेवा में। पूज्य गुरुदेव ने तो अपना ही उदाहरण दिया है, कैसे उन्होंने अपना शरीर समाज सेवा में पूरी तरह लगाया। और देखिए, 75 साल की उम्र में भी उनमें कमाल की कार्यक्षमता थी, स्वास्थ्य भी असाधारण था।
बिल्कुल, वो एक तरह से उस शारीरिक निवेश का सबूत था,
एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण।
अच्छा, तो दूसरा निवेश था बुद्धि का, अपनी जो सोचने समझने की शक्ति है उसको फिजूल की बातों में या अहंकार में या गलत इच्छाओं में लगाने की बजाय उसे लोक कल्याण के लिए सकारात्मक विचारों में लगाना। हाँ, और ये बात सोचने जैसी है, पूज्य गुरुदेव की औपचारिक शिक्षा मतलब स्कूली पढ़ाई तो बहुत सीमित थी।
हाँ, सही कह रही है।
लेकिन उसी बुद्धि को उन्होंने सही दिशा दी।
हाँ।
और नतीजा, वेद पुराणों के भाष्य लिखे, विश्व कल्याण की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई।
कमाल है।
इससे ये पता चलता है कि बुद्धि कितनी है, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि वो किस दिशा में लग रही है।
बिल्कुल,
उसे सकारात्मक और रचनात्मक कामों में लगाना, वही असली बोना है।
एकदम सही।
अच्छा, तीसरी चीज थी भावनाएं।
मतलब
हमारा जो प्रेम है, करुणा है, संवेदना है, उसे सिर्फ अपने परिवार, अपने कुछ लोगों तक ही मत रखो, उसे फैलाओ सारे संसार के लिए। जिसे वो कहते थे विराट ब्रह्म, ये पूरी सृष्टि, उसके प्रति रखो। उन्होंने खुद गिरे हुए लोगों को उठाने में, पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने में अपनी सारी भावनाएं लगा दी।
और उसका नतीजा, उन्हें पूरी दुनिया से स्नेह मिला, सम्मान मिला।
जी,
ये दरअसल अपनी भावनात्मक ऊर्जा का विस्तार करना है। जब हम अपनी अच्छी भावनाएं दूसरों के लिए लगाते हैं ना, तो उसका एक कॉस्मिक लेवल पर एक सकारात्मक असर लौटकर आता ही है।
और चौथी चीज जो शायद कई लोगों को सबसे मुश्किल लगती है, वो है धन।
हाँ, धन, अपनी कमाई है या विरासत में कुछ मिला है, उसे सिर्फ अपने ऐशो आराम में खर्च न करके परमार्थ के कामों में लगाना, भगवान के काम में लगाना, जैसा वो कहते थे।
पूज्य गुरुदेव ने तो खुद मिसाल पेश की, अपनी पैतृक संपत्ति से लेकर बाद में जो भी संसाधन मिले सब कुछ लगा दिया। गायत्री तपोभूमि बनी, शांति कुंज बना, ब्रह्म वर्चस, हजारों शक्तिपीठ बने।
और उनका अनुभव यही था कि सही काम के लिए, अच्छे काम के लिए साधन कभी कम नहीं पड़ते, वो आते जाते हैं।
बिल्कुल।
और यही जो चार तरह का बोना था ना, शरीर, बुद्धि, भावना, धन, यही काटने का आधार बना। पूज्य गुरुदेव के अनुसार इसी के फल के तौर पर उन्हें चार सिद्धियां मिली, धन, लोगों का प्यार, तेज बुद्धि और अच्छा स्वास्थ्य।
अच्छा।
और साथ में तीन रिद्धियां भी, आत्मसंतोष, समाज में सम्मान और लोगों का सहयोग और दैवीय कृपा।
वाह,
ये बिल्कुल प्रकृति के नियम जैसा है। देखिए ना, बादल समुद्र से पानी लेते हैं, फिर बरसते हैं, वो पानी नदियों से होकर वापस समुद्र में।
हाँ, सही उदाहरण है।
या जैसे हाथ कमाता है, पेट को देता है, और पेट से जो शक्ति मिलती है वो पूरे शरीर को मिलती है, हाथ को भी।
पूज्य गुरुदेव ने इसे समझाने के लिए कई पुराने उदाहरण भी दिए, पौराणिक, ऐतिहासिक, जैसे शबरी के बेर, केवट की नाव, सुग्रीव की सेना।
हाँ, राजा बलि का सर्वस्व दान, गोपियों का माखन, कर्ण के सोने के दांत, सुदामा के चावल।
इन सब में एक ही पैटर्न दिखता है ना?
बिल्कुल, कि भगवान ने या कहिए भाग्य ने पहले कुछ लिया या मांगा और उसके बाद कई गुना करके वापस दिया।
संत नामदेव का भी उदाहरण है, कुत्ते को घी देना, वो भी शायद इसी तरफ इशारा करता है।
हाँ, हो सकता है। बल्कि पूज्य गुरुदेव ने तो अपने ऊपर जो जानलेवा हमले हुए थे, रिवॉल्वर चली, छुरा चला, उससे वो जो बचे उससे भी वो इसी दैवी कृपा और अपने बोए हुए शरीर बल का ही नतीजा मानते थे।
अच्छा,
तो ये सिद्धांत हमें सिर्फ लेने वाला या मांगने वाला नहीं बनाता, ये कहता है पहले दो, योगदान करो।
तो कुल मिलाकर पूज्य गुरुदेव के जीवन का और उनके इस उद्बोधन का निचोड़ सार यही है, बो और काटो।
हाँ,
हमारे पास जो भी साधन है, शरीर, बुद्धि, भावना, धन, उन्हें बिना किसी स्वार्थ के समाज की भलाई में, परमार्थ में लगाएं, तो उसका फल चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, वो कई गुना होकर जरूर मिलेगा।
हाँ, और ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है।
Yes.
ये एक यूनिवर्सल लॉ जैसा है, सबके लिए लागू होता है। बस मुख्य जोर हमेशा निस्वार्थ भाव से योगदान करने पर है, फल की चिंता छोड़कर कर्म करने पर।
बिल्कुल। अब यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, पूज्य गुरुदेव ने भगवान के खेत या विराट ब्रह्म में बोने की बात कही, आज के समय में इस विराट ब्रह्म का या समाज रूपी भगवान का क्या मतलब हो सकता है प्रैक्टिकल टर्म्स में?
अच्छा सवाल है।
और आज का कोई व्यक्ति अपने शरीर, बुद्धि, भावना और धन को इस सिद्धांत के हिसाब से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बो सकता है?
हाँ, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।